जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, दूर नहीं, थक मत जाना, बुरा ही थक मत जाना, रात गिरानी
शांति। आप हम सभी आध्यात्मिक पथ के राही एक ऐसे पथ पर अग्रसर हैं जो संसार की सबसे लंबी यात्रा है, सबसे ऊंची, सबसे श्रेष्ठ, सबसे विशेष यात्रा है। यह हमारी यात्रा स्वपरिवर्तन की यात्रा है, स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन। यह हमारी यात्रा जीरो से हीरो बनने की यात्रा है, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की यात्रा है। यह हमारी यात्रा गिरती कला से चढ़ती कला की ओर जाने वाली यात्रा है। यह हमारी यात्रा पतन से उत्थान की ओर जाने वाली यात्रा है। नर से नारायण बनने वाली यात्रा है। और इस यात्रा की एक विशेष खूबी है कि स्वयं भगवान पंडा बन, गाइड बन हमारे साथ साथ चल रहा है। और बाबा कहते हैं कि मैं आप बच्चों को अपने पलकों पर बिठाकर आपको इस यात्रा पर ले जा रहा हूं। लेकिन इस यात्रा पर, इस यात्रा में या इस यात्रा के दौरान जो अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, विघ्न आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, कई प्रकार के अनजान मोड़ आते हैं जिनको पार करने में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन परिस्थितियों को बार बार फेस करते करते कई बार थकावट का अनुभव होता है, कई बार अपने आप को असमर्थ अनुभव करते हैं। जबकि ये ब्राह्मण जीवन की यात्रा बहुत सुखद यात्रा है, बहुत विशेष यात्रा है, अनेक ईश्वरीय प्राप्तियों से संपन्न, ईश्वरीय अनुभूतियों से संपन्न यात्रा है। लेकिन इस यात्रा पर चलते चलते हम बीच बीच में थकावट का अनुभव करने लगते हैं, और जहां थकावट होती है वहां कोई भी कार्य मुश्किल अनुभव होता है। तो इस ब्राह्मण जीवन की इस यात्रा में कौन कौन सी ऐसे कारण हैं जो हमारे मन को थकाने वाली होती हैं, उनको अभी हम देखेंगे। तो आज का विशेष विषय है रात के राही थक मत जाना, क्योंकि हमारी इस यात्रा में स्वयं भगवान हमारा साथी है, पंडा है, हमारा गाइड है, और हमें हर पल कदम कदम पर गाइडेंस दे रहा है। इसलिए हमें थकना नहीं है, अथक बन करके चलते रहना है। तो इस ब्राह्मण जीवन में ऐसे थकाने वाली कौन कौन सी बातें हैं जो हमारे मन को थकावट का अनुभव कराती हैं, सबसे पहले हम उन बातों को देखेंगे। तो उसमें सबसे पहली बात है वीकनेसेस, कमजोरियां। आधा कल्प से आप हम सभी देहभान और देह अभिमान में रहते आए हैं, और देहभान में रहने के कारण जो माया के पांच विकार हैं वो हमारे पर हावी रहे हैं। उन पांच विकारों के कारण हमारे मन में अनेक प्रकार की कमजोरियों ने अपना एक अड्डा बनाया हुआ है, और मन बार बार उन कमजोरियों के वशीभूत हो जाता है। जैसे कि इस जीवन में चलते चलते कोई हम शरीर, कोई हम सफर साथी यदि हमें कमेंट कर देता है, टोंट कस देता है, ये हमारे को कुछ ऐसे शब्द बोल देता है, तो उससे हम अपने आप को डिसहार्टेड फील करते हैं, सोचते हैं कि मुझे ऐसा क्यों बोला हुआ है, उसने अपने शब्दों से मेरे दिल को आघात पहुंचाया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। चलते चलते किसी के ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे मन को, जो हमारे मूड को ऑफ कर देते हैं। या कहें कि हमारे में ऐसे एक सेंसिटिविटी होती है जो किसी के शब्दों को लेकर के हम उसको गहराई से फील कर लेते हैं, जिसको बाबा कहते हैं फीलिंग की देवी, फीलिंग की फ्लो। तो ऐसे कई प्रकार की जो कमजोरियां हैं वो कमजोरियां हमारे मन पर, हमारे अंदर हैं, लेकिन बीच बीच में इस सफर पर चलते चलते हमारे मन पर हावी हो जाती हैं। तो हमें देखना है कि इस ब्राह्मण जीवन की इस सुखद यात्रा में ऐसे कौन कौन सी कमजोरियां हमारे अंदर हैं जो बार बार हमारे मन पर वो अटैक करती हैं, हमारे मन को कमजोर करती हैं। क्योंकि जब जब कमजोरी इमर्ज होगी, मन को अपने अधीन करेगी, उस समय मन कमजोर होगा, और एक कमजोर मन थकावट का अनुभव कराएगा, और थका हुआ व्यक्ति फिर यात्रा पर खुशी खुशी से आगे नहीं बढ़ सकता है। तो सबसे पहला कारण है वीकनेसेस, कमजोरियां। सेकंड कारण है बॉन्डेजेस, बंधन। बाबा कहते हैं संसार में, संसार की सभी आत्माएं अनेक प्रकार के बंधनों में बंधी हुई हैं। इस ज्ञान में आने से पहले हम सभी उन बंधनों में जकड़े हुए थे। बाबा कहते सबसे पहला बंधन है देह का बंधन। अपने आप को देह समझना यह सबसे बड़ा बंधन है, देह के संबंधियों का बंधन, क्योंकि उन आत्माओं को हमें संतुष्ट करना पड़ता है, उन आत्माओं की इच्छा के अनुसार हमें चलना पड़ता है, फिर वो उचित हो या ना हो। देह के संस्कार, दैहिक पदार्थ, तो ऐसे अनेक प्रकार के जो बंधन हैं, हमें देखना है कि उनमें से हम कौन से बंधन में बंधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं। एक व्यक्ति अपने दोस्त से मिलने के लिए किसी विशेष कार्यार्थ घर से निकलता है और घर से अर्ली मॉर्निंग निकलता है। गांव के पास से एक नदी गुजरती है, उसको उस नदी को पार करना है, तो नदी पर पहुंचता है और वहां पर नाव को देखता है। उस समय काफी अंधेरा होता है और वो नाव में बैठ करके चप्पू चलाना शुरू कर देता है और वो नाव को चलाते चलाते उसको सवेरा हो जाता है। सुबह होते हुए जब वो देखता है कि मैं जहां था वहीं अब भी वहीं हूं, ऐसा क्यों? क्योंकि उसने लंगर नहीं खोला, तो उसने पुरुषार्थ तो किया, मेहनत की, सब कुछ किया, लेकिन गलती क्या की उसने कि जो नाव बंधी हुई थी जिस लंगर से, उस लंगर को उसने खोला नहीं। तो इस ब्राह्मण जीवन में हम इस यात्रा पर चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उमंग उत्साह से बढ़ रहे हैं, खुशी खुशी से बढ़ रहे हैं, लेकिन यदि हमने कोई लंगर कहीं लगा के रखा होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो हमें देखना है कि ऐसे कौन से बंधन हमने लंगर के रूप में बांधे हुए हैं, और वो लंगर बहुत सूक्ष्म होते हैं, वो हमारे मन को बांध के रखते हैं। बाहर से वो देखने में नहीं आते हैं, लेकिन अंदर से मन को वो बांधे हुए होते हैं। इसलिए इस ब्राह्मण जीवन में देखा जाता है, इस ब्राह्मण जीवन में चलते चलते कुछ वर्ष के पूर्व, कुछ वर्ष के बाद हम पुनः फिर अपने आप को वहीं खड़ा पाते हैं। 5 साल पहले जो हमारी स्थिति थी, आज भी हम अपने आप को वहीं खड़ा पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने अपने आप को कोई ना कोई बंधन में बांधा हुआ है। संसार में बहुत सारे बंधन हैं, समाज का बंधन है, कुछ लोकलाज का बंधन है, हमने उन बंधनों को काटा नहीं, तोड़ा नहीं। तो जहां बंधन है वहां मेहनत है, और हम बार बार उन बंधनों को तोड़ते हैं, जोड़ते हैं, तो बार बार की हुई मेहनत फिर हमें थकावट का अनुभव कराएगी। तो सेकंड कारण है बॉन्डेजेस, बंधन। तीसरा कारण है वर्डन, बोझ। जैसे एक मुसाफिर जब कहीं मुसाफिरी पर जाता है और कोई विशेष पहाड़ी उसको चढ़नी होती है, तो उस समय उसका लक्ष्य रहता है कि हम कम से कम सामान लेकर चलें, क्योंकि जितना सामान, जितना बोझ कम होगा उतना वो खुशी खुशी से आगे बढ़ सकेगा। जितना अधिक बोझ उतना अधिक उसको मेहनत करनी पड़ेगी। इस ब्राह्मण जीवन की यात्रा में इस चढ़ाई पर चढ़ने के लिए बाबा कहते हैं कि आपको हल्का बनकर चलना है, लेकिन यदि हम अपने साथ कई प्रकार के बोझ लेकर चल रहे हैं तो हम इस यात्रा पर खुशी खुशी से आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इस ब्राह्मण जीवन में ऐसे कौन कौन से बोझ हैं जो हो सकता है कि हम उनको समझ नहीं पा रहे, लेकिन हमारे साथ अभी भी वो बोझ के रूप में हैं। सबसे पहली बात है, बाबा कहते हैं पापों का बोझ। बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन में जब से आप बाप के बने तब से आपने पाप करने छोड़ दिया। इस जीवन से पहले के जो जीवन है उन जीवनों में हम सभी ने बहुत सारे पाप कर्म किए होंगे जाने अनजाने में, और वो पाप कर्मों का बोझ हमारे सर पर अभी भी है। तो बाबा कहते हैं यदि उन पाप कर्मों के बोझ को आपने योग अग्नि से भस्म नहीं किया, उनको अपने आपने अपने सिर से नहीं उतारा, तो बीच बीच में बार बार वो अपना रूप दिखाते रहेंगे, आपके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करते रहेंगे, क्योंकि पाप कर्मों का फल कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो सामने आता ही है। तो हमें देखना है कि हमने अपने पापों के बोझ को कितना अपने सिर से उतारा है, कितना हम हल्के बने, और उसका एकमात्र साधन है याद की यात्रा। तो याद की यात्रा के माध्यम से हम अपने पापों के बोझ को जितना उतारेंगे उतना हल्का बनेंगे, जितने हल्के बनेंगे उतना हम इस यात्रा पर खुशी खुशी से आगे बढ़ते रहेंगे। दूसरा बोझ है बेकर्मों का बोझ। बाबा कहते हैं ब्राह्मण आत्माएं बड़े बड़े पाप कर्म तो नहीं करते हैं, लेकिन छोटे छोटे विकर्म, सूक्ष्म विकर्म वो अवश्य करती रहती हैं। कैसे करते होंगे? दूसरों की निंदा करना, दूसरों की गिलानी करना, परचिंतन, प्रदर्शन, दूसरों को अपने शब्दों से दुख देना, देह भान में आना, ये भी एक विकर्म है। बाप की निंदा कराना, इस ब्राह्मण जीवन में बाबा कहते हैं कि जो आप बाप की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं वो भी उससे भी एक विकर्म बनता है। तो इस ब्राह्मण जीवन में जो कई प्रकार के हम जाने अनजाने में विकर्म कर लेते हैं, तो जहां विकर्म है, जहां विकर्म हो रहे हैं, वहां भगवान की मदद नहीं मिलेगी। जहां विकर्म हो रहे हैं तो वहां उमंग उत्साह खुशी नहीं होगी, और यात्रा पर निरंतर आगे बढ़ने के लिए हमारे मन में, हमारे अंदर उमंग उत्साह और खुशी का होना आवश्यक है। तो यदि हमसे कोई भी कारण या कारण विकर्म हो रहे हैं तो हम इस यात्रा पर आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो हमें अपने आप को देखना है कि हम कौन कौन से ऐसे सूक्ष्म विकर्म कर रहे हैं जो हमें नहीं करने हैं। तीसरा बोझ है अवज्ञाओं का। भगवान ने इस जीवन में एक सुगमता पूर्वक आगे बढ़ने के लिए, इस जीवन में निरंतर आगे बढ़ने के लिए हमें अनेक प्रकार की आज्ञाएं दी हैं, और बाबा कहते हैं कि जो बच्चे उन आज्ञाओं को पालन करते हैं उन्हें बाप से दुआएं प्राप्त होती रहती हैं। पहले भी आप हम सब ने रिवाइज की थी कि बाप की दुआएं प्राप्त करनी है तो आज्ञाकारी बनो। तो बाबा ने हमें जो आज्ञा दी है दृष्टि के लिए, अपनी भावनाओं के लिए, मन के लिए, वाणी के लिए, संबंध संपर्क में आने के लिए, कर्म करने के लिए, दिनचर्या के लिए, यदि हम उन आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं तो भगवान के हमें दुआएं प्राप्त नहीं होंगी, भगवान के हमें मदद प्राप्त नहीं होगी। और जहां भगवान की मदद नहीं, दुआएं नहीं, उसकी शक्ति नहीं, वहां जीवन में मुश्किल का अनुभव करना पड़ेगा। तो तीसरा बोझ है अवज्ञाओं का। चौथा बोझ है जिम्मेवारियों का। हम आधा कल्प से अपने आप को कहीं ना कहीं मुखिया समझते आ रहे हैं कि मैं इसका जिम्मेवार हूं, ये मुझे ही करना है। और ये जो हमारी भावना है कि मैं मुझे ही करना है, मैं बड़ा हूं, मैं सीनियर हूं, ये मेरी जिम्मेवारी है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे मन को अपने अधीन करके रखता है। ये कहीं ना कहीं हमारे मन की शक्ति को कमजोर करता है। तो जहां मैं और मेरापन है, बाबा कहते हैं वहां पर माया अनेक प्रकार के फेरे लगाती रहती है। तो जहां मैं और मेरापन है वहां आत्मा की शक्ति क्षीण होती है। हमारा मन बेहद में नहीं जाता है, मन की शक्ति बढ़ती नहीं है। तो जहां ये मैं और मेरेपन का बोझ है वहां पर थकावट होगी, मेहनत होगी। तो चौथा कारण है बोझ। अगला कारण है लीकेज। हम इस ब्राह्मण जीवन में चल रहे हैं, अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, भगवान की आज्ञा को पालन भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ऐसा सूक्ष्म लीकेज है जो कि हमारी सारी शक्तियों को नष्ट करता रहता है। तो इस ब्राह्मण जीवन में हमें देखना है कि यदि इस ब्राह्मण जीवन में चलते चलते हम थकावट का अनुभव करते हैं, रुकावट का अनुभव करते हैं, बार बार हम अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, तो हमें देखना है कि कहीं कोई लीकेज तो नहीं है। बाबा कहते हैं कि कोई किला कितना भी मजबूत हो, लेकिन उसकी अगर एक दीवार भी, एक उसकी ईंट भी अगर कमजोर है तो वो पूरे किले को कमजोर कर देती है। तो इस ब्राह्मण जीवन में इस यात्रा पर चलते चलते हमें देखना है कि हमारे अंदर ऐसी कौन सी लीकेज है जो हमारी सारी शक्ति को खत्म करती रहती है। इस यात्रा में थकावट का एक कारण है लीकेज। उस लीकेज को हमें चेक करके बंद करना है। अगला कारण है कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष। संघर्ष, व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी बुद्धिमान हो, लेकिन यदि जीवन में बार बार संघर्ष हो रहा है तो उसकी शक्ति, उसकी खुशी, उसका उमंग उत्साह क्षीण होता रहेगा। तो इस ब्राह्मण जीवन में हमें देखना है कि हमारा कहीं कोई संघर्ष तो नहीं है। संघर्ष संबंध में हो सकता है, संघर्ष हमारे पुरुषार्थ में हो सकता है, संघर्ष सेवा में हो सकता है। जब हम सेवाओं के फील्ड में होते हैं तो कई प्रकार संस्कारों वाली आत्माएं हमारे साथ होती हैं, और उन आत्माओं से यदि हमारा संस्कारों का मेल नहीं होता है तो वहां संस्कारों का वहां टक्कर होता है, संघर्ष होता है। तो जहां संघर्ष है वहां थकावट है, और जहां थकावट है वहां यात्रा सुखद नहीं हो सकती है। अगला कारण है डिजीज, बीमारियां। एक किसी रोगी व्यक्ति को कहा जाए कि आपको ये सामने की पहाड़ी चढ़नी है, आपको ये यात्रा पूरी करनी है, उसको बेशक कितना भी प्रलोभन दिया जाए लेकिन वो उस यात्रा को पूरा करने में अपने आप को असमर्थ अनुभव करेगा। इस ब्राह्मण जीवन में इस यात्रा पर चलते चलते जो थकावट का एक कारण बनता है वो है हमारे अंदर कोई ना कोई बीमारी अपना काम कर रही है। और ब्राह्मण जीवन में एक ऐसी बीमारी है जिसको आप हम सभी बड़ी खुशी खुशी से उसको इनवाइट करते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, और उस बीमारी के कारण जो हमारा समय एनर्जी वेस्ट होती है वो सब बेस्ट होने के बाद हमको उसका एहसास होता है। वो बीमारी है परचिंतन, परदर्शन, परमत। ये ऐसी बीमारी है जो सबको प्रिय है। खुशी खुशी से इस बीमारी का आह्वान करते हैं। तो जहां परचिंतन, परदर्शन, परमत की बीमारी है, वहां हम थकावट का अनुभव करेंगे, इस यात्रा पर आगे नहीं बढ़ सकेंगे, क्योंकि हम एक संगठन के साथ हैं, एक समाज के साथ हैं, और हमारे साथ अनेकों आत्माएं, अनेकों पुरुषार्थी हैं। तो इस पुरुषार्थ में, इस रास्ते पर चलते चलते हम दूसरों की कमी कमजोरियां देखने लगते हैं। उनकी बहुत सारी विशेषताएं भी हैं, लेकिन विशेषताओं में हमारी रुचि कम होती है। हमारी विशेष रुचि उनकी कमजोरियों पर होती है कि उनमें कौन कौन सी वीकनेस है, उनमें कौन कौन सी कमजोरी है, और हम उसका चिंतन भी करते हैं, दूसरों को सुनाते भी हैं। तो दूसरों की कमजोरियों को देखना, दूसरों के बारे में चिंतन करना कि कौन क्या करता है, किसमें क्या क्या खामियां हैं, या दूसरी आत्माओं के मत पर चलना। कई बार इस ब्राह्मण जीवन में ऐसा देखा जाता है कि कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जिनसे हमारे संस्कार मैच करते हैं। हो सकता है वो हमारे से एज में सीनियर हो, ज्ञान में सीनियर हो, और उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो कोई ना कोई एक अपनी कमजोरी के अधीन होते हैं, और यदि वो कमजोरी हमारे जीवन में काम कर रही है, जैसे कि अमृत बेला उठना, प्रॉपर उठना, उसको विधिवत रूप से करना, और कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रॉपर विधिवत रूप से अमृत बेला नहीं कर रहा है, उसको फॉलो नहीं कर रहा है, और उस व्यक्ति से यदि हम राय लेंगे तो वो क्या जवाब देगा। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी, क्योंकि वो जवाब देगा अपने हिसाब से, वो अपनी कमजोरी के हिसाब से जवाब देगा, क्योंकि उसने उसको प्रॉपरली जीवन में अप्लाई नहीं किया। तो यदि हम इस ब्राह्मण जीवन में कुछ ऐसी आत्माओं से राय लेते हैं, उनसे ऐसी मत लेते हैं जो वो स्वयं उस बात को फॉलो नहीं करते हैं, तो हमें भी फिर वो वैसे ही राय देंगे, और उनके मत पर यदि हम चलेंगे तो हम इस ब्राह्मण जीवन में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं एक बाप के मत पर चलो, आत्माओं के मत पर नहीं, क्योंकि आत्माएं कहीं ना कहीं माया के अधीन है, वशीभूत हैं। और इस यात्रा में चलते चलते थकावट का एक कारण है साइट सीइंग्स। जैसे कोई व्यक्ति यात्रा पर जा रहा है तो रास्ते में कई प्रकार के साइट सीइंग्स होते हैं, और साइट सीइंग्स बहुत वो रुचिकर होते हैं, मन को लुभावने वाले होते हैं। तो कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उन साइट सीइंग में फंस जाते हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं तो आगे और भी अच्छे अच्छे सीन सीनरियां देखने में आते हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते एक समय आता है जब वो रास्ता भटक जाते हैं। तो इस ब्राह्मण जीवन में कई ऐसे साइट सीन्स आते हैं, हम सभी के सामने आते हैं। यदि उन साइट सीन्स को हम नहीं समय पर समझा नहीं, परखा नहीं, अपने आप को सावधान नहीं किया, तो साइट सीन्स में हम फंस जाते हैं, और उनमें फंसने के बाद एक लंबा समय हमारा वेस्ट होता है, हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, हमारा पुरुषार्थ लंबे समय तक स्टॉप हो जाता है। तो हमें देखना है कि इस ब्राह्मण जीवन में ऐसे कौन कौन से साइड सीन्स हैं जिनमें हम बार बार भटक जाते हैं। कोई व्यक्ति बार बार साइड सीन्स में भटक जाए, पहले उसमें फंसे फिर बाहर निकले, तो बार बार अगर इस प्रकार का जीवन में कुछ चल रहा है, कोई साइड सीन्स है, तो उससे थकावट होगी, और थकावट के कारण हम पुरुषार्थ में इस मंजिल पर खुशी खुशी से आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अगला कारण है लैक ऑफ अटेनमेंट्स या एक्सपीरियंस, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, प्राप्तियों का, अनुभूतियों का अभाव है। हम इस ब्राह्मण जीवन में चलते रहे, पुरुषार्थ भी कर रहे, आगे भी बढ़ रहे, लेकिन हम समय के साथ आगे बढ़ रहे, प्राप्तियों के साथ आगे नहीं बढ़ रहे, अनुभूतियों के साथ आगे नहीं बढ़ रहे। कहते हैं कि हम 10 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, ये ज्ञान हमारे में नहीं चल रहा है। अर्थात जीवन में प्राप्तियों का हम अनुभव नहीं कर रहे, अनुभूतियों का अनुभव नहीं कर रहे। तो इस ब्राह्मण जीवन में यदि प्राप्तियों का अनुभव नहीं है, अलौकिक अनुभूतियों का हम अनुभव नहीं कर रहे, योग तो कर रहे लेकिन योग में अनुभव नहीं हो रहा है, तो इस रास्ते पर हमें थकावट का अनुभव होगा। अगला कारण है कि इस रास्ते पर बहुत मेहनत है, ये मेहनत का मार्ग है और यहां विशेषकर मन की मेहनत है, जो सबसे बड़ी मेहनत है। किसी व्यक्ति को यदि कोई मन का कार्य दिया जाए कि आपको 2 घंटे में यह कार्य करके देना है, किसी को कोई विशेष टॉपिक दिया जाए कि 2 घंटा आपको इस पर चिंतन करना है, मनन करना है और आपको इसके बारे में सुनाना भी है, तो शायद जल्दी व्यक्ति उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। यदि उसी व्यक्ति को कोई स्थूल कार्य दिया जाए कि आपको 4 घंटे में यह कार्य करके देना है, तो हो सकता है उसको वो जल्दी स्वीकार कर ले। तो ये जो हमारा मार्ग है, ये यात्रा है, इसमें मेहनत है और वो मेहनत मन की मेहनत है, और मन की मेहनत हरेक से नहीं पहुंचती है। इसलिए इस ब्राह्मण जीवन में चलते चलते कई आत्माएं थक जाती हैं। जैसे जब ज्ञान में आते हैं तो बहुत उमंग उत्साह रहता है, लेकिन बाद में आगे बढ़ते बढ़ते मन की मेहनत नहीं पहुंचती तो ठंडे हो जाते हैं। तो इस ब्राह्मण जीवन में कई ऐसे कारण हैं, कई ऐसी बातें हैं जो थकावट का अनुभव कराती हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि आपको इस यात्रा पर थकना नहीं है, अथक होकर चलना है। तो इस यात्रा पर हम अथक होकर के खुशी खुशी से, उमंग उत्साह के पंख लगाकर हम निरंतर आगे बढ़ते रहे, उसके लिए बाबा ने कई प्रकार के साधन दिए। तो ऐसे कौन कौन से अथक बनने के साधन हैं, अथक बनने की विधियां हैं, हमें उनको भी देखना है और उनको जीवन में अप्लाई करना है, तभी हम इस यात्रा पर खुशी खुशी से आगे बढ़ सकेंगे और बढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहली बात है कि भगवान का हाथ और साथ हमें प्राप्त है। जब कोई व्यक्ति यात्रा पर जाता है तो सबसे पहला उसकी सोच होती है कि उस यात्रा पर हम किसी ऐसे व्यक्ति को साथ लेकर चलें जिनसे हमारे संस्कार मैच होते हों, जिससे हमको मदद प्राप्त हो सके, जो हमारी बात को सुनता समझता हो, हमारी बात को मानने वाला हो। क्योंकि यात्रा पर यदि ऐसा व्यक्ति है तो उसका सहयोग प्राप्त होगा। तो इस ब्राह्मण जीवन में इस यात्रा पर हमारा साथी कौन? स्वयं भगवान। तो भगवान का साथ और भगवान का हाथ। तो बाबा कहते हैं कि बाप के हाथ में हाथ देकर के आप चलेंगे तो कभी भी आप थकावट का अनुभव नहीं करेंगे। तो बाबा ने जो कहा है कि बाप के साथ रहो सर्व संबंधों से और बाप के हाथ में हाथ देकर के चलो। तो बाप के हाथ में हाथ देकर चलना अर्थात बाप का हाथ कौन सा? श्रीमत। तो बाप के श्रीमत को हम कदम कदम पर फॉलो करते हुए चलेंगे तो हम इस ब्राह्मण जीवन में कभी भी थकावट का अनुभव नहीं करेंगे, अथक होकर के हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहला साधन है बाप का हाथ और साथ। दूसरा, बाबा कहते हैं कि आपको डबल लैड बनके चलना है। भगवान जो सारे विश्व का बोझ उठाने वाला है, उसने जिम्मेदारी ली है कि आप हमें अभी सारे बोझ मुझे देकर मेरे हवाले कर, आप अभी डबल लाइट होकर चलो। तो बाबा ने कहा डबल लाइट अर्थात एक तो अपने आप को अशरीर आत्मा समझो और दूसरा फरिश्ता और सारे बोझ बाप को देकर चलो। तो हम जीवन में जो अनेक प्रकार के बोझ लेकर चल रहे हैं, यदि हम वो सारे बोझ भगवान के हवाले करके चलेंगे तो हम बहुत सारे कार्य करते हुए भी अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। संबंधों में आते हुए, संबंध निभाते हुए हमें वो भारीपन नहीं लगेगा, वो हमारे मन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो हमारे मन को बार बार विचलित नहीं करेंगे। क्योंकि वर्तमान समय जो संबंध है, बाबा ने कहा कि जो भी आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आई हैं, चाहे लौकिक में या अलौकिक में, वो कोई ना कोई हिसाब किताब को लेकर के आई हैं। तो उन आत्माओं के साथ रहते हुए, उनके साथ संबंध निभाते हुए, बाबा ने कहा कि आपको अपने हिसाब किताब भी पूरे करने हैं, चुकतु करने हैं। इसके लिए बाबा ने कहा कि सारी जिम्मेवारियों का बोझ मेरे हवाले कर, निमित्त बनकर चलो, ट्रस्टी बनकर चलो, तो आप इस यात्रा पर हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, अथकपन का अनुभव करेंगे, कभी भी थकेंगे नहीं। आपकी खुशी, आपका उमंग, उत्साह, उसका पारा कम नहीं होगा। पहला बाप का हाथ और साथ, दूसरा डबल लाइट, तीसरा है जो हम सभी के लिए योग की विधि है, योग का एक प्रयोग है, बाप की छत्र छाया में चलना। इस ब्राह्मण जीवन में बाबा कहते हैं आप जो कुछ भी करते हो, हमेशा आप ये समझो कि हम बाप की छत्र छाया में, हम कहीं जा रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, कोई सेवाएं कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि उस समय अपने आप को ऐसा महसूस करो कि हम बाप की छत्र छाया के नीचे हैं, भगवान से हमें सर्व शक्तियों की किरणें प्राप्त हो रही हैं। तो उस छत्र छाया के नीचे रहकर के हम कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें थकावट का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि उस छत्र छाया में उन किरणों में सर्व शक्तियां समाई हुई हैं और उन सर्व शक्तियों से हमारा मन हमेशा चार्ज होता रहेगा। तो जहां भगवान की छत्र छाया है वहां कोई भी थकावट नहीं है। तो ये एक योग के प्रयोग की विधि है जिसको हमें जीवन में अप्लाई करते हुए आगे बढ़ना है। अगला साधन है बाप का दिल तख्त। बाबा कहते हैं कि बाप ने सभी ब्राह्मण बच्चों को एक इतना विशाल, इतना बेहद का दिल तख्त दिया है जिसमें आप बच्चे चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते, हर कर्म करते हुए भी उस दिल तख्त पर रह सकते हो। जैसे तो बाबा ने कहा कि उस दिल तख्त पर आप रह करके हर कर्म करेंगे तो कभी भी आप भारीपन का अनुभव नहीं करेंगे। देख उसकी कंडीशन है, बाबा ने कहा कि बाप का दिल तख्त एवर प्योर है, तो उस दिल तक पर प्योर आत्माएं ही विराजमान रह सकती हैं। तो बाप के दिल तक पर बैठने के लिए जैसा बाप वैसा हमें बनना पड़ेगा। अगला है बाप की गोदी, यह भी एक योग की विधि है, योग के प्रयोग की विधि है। जैसे एक बच्चा जब अपने मां बाप की गोद में होता है तो उसके माता पिता उसको जहां भी चाहे लेकर के जाएं, उससे कोई थकावट का अनुभव नहीं होगा, उसका पूरा एंजॉय लेता है। इसी प्रकार से बेहद के माता पिता, हम बच्चों को कहते हैं कि आप माता पिता की गोद में रहो, मां बाप की गोद में चलेंगे आप तो कभी भी थकावट का अनुभव नहीं करेंगे। यही थकावट का अनुभव करेंगे तो मां बाप करेंगे, आप नहीं करेंगे। तो इसलिए हम इसको योग में ऐड कर सकते हैं कि हम जो कुछ भी करते हैं
हम अपने आप को ऐसा अनुभव करें कि हम बाप की गोद में हैं, बाबा हमें अपनी गोद में लेकर के चल रहे हैं। तो एक साधन है ये अथक बनने के लिए। दूसरा एक साधन है लिफ्ट। बाबा ने कहा कि बाप ने आप बच्चों को इस ब्राह्मण जीवन के जन्म की सौगात लिफ्ट की गिफ्ट दी है, और ये लिफ्ट ऐसी है जो कभी भी आपको थकावट का अनुभव नहीं होने देगी। लेकिन इसकी बाबा ने कई विशेषताएं बताई हैं। किसी एक अभ्यक्त मुरली में बाबा ने इसकी 7-8 बातें बताई हैं, जिसमें पहली बात है कि ये पावरफुल और सहज लिफ्ट की गिफ्ट है, ये बहुत पावरफुल है। दूसरी विशेषता इसकी है कि ये लिफ्ट आपको 1 सेकंड में आप जहां चाहे वहां इसके माध्यम से आप पहुंच सकते हैं। इसकी विशेषता है कि बाबा ने कहा इस लिफ्ट से आप तीनों लोगों का सैर कर सकते हैं। चौथी इसकी विशेषता है कि इस लिफ्ट के माध्यम से आप जिस लोक का अनुभव करना चाहें, जिस भी प्राप्ति का अनुभव करना चाहें, वो प्राप्ति का अनुभव कर सकते हैं। हाँ, ये हमारे जो 3 फ्लोर हैं, सूक्ष्म वतन, मूल वतन, तो इस लिफ्ट के माध्यम से हम जहां चाहे वहां पर जा सकते हैं, और जितना समय हम चाहें उतना समय वहां पर हम रह सकते हैं। ये इस लिफ्ट की विशेषता है। बाबा ने कहा कि चेक करो कि ये आपकी लिफ्ट कहीं अटकती तो नहीं है, क्योंकि जब लिफ्ट में कोई व्यक्ति फंस जाता है तो उसको बहुत सफोकेशन होता है। तो बाबा ने कहा कि चेक करो कि आपकी ये लिफ्ट कहीं अटकती तो नहीं है, और बाबा कहते इस लिफ्ट की चाबी है अधिकारीपन। अधिकारी बनकर के इस लिफ्ट को आप यूज करेंगे तो ये लिफ्ट कभी भी आपको धोखा नहीं देगी। और इसकी एक विशेषता है, बाबा ने कहा कि इस लिफ्ट को आप अमृत वेले विधिवत रूप से इसको सेट कर देंगे तो सारा दिन ये लिफ्ट अपने आप ऑटोमेटिक कार्य करती रहेगी। तो रोज हमें इस रूहानी लिफ्ट का प्रयोग करना है। जैसे कोई व्यक्ति अगर कहीं पहाड़ी पर चढ़ता है तो उस समय उनको उनकी सुविधाओं के लिए रोप वे होते हैं, जिनका उपयोग करके वो उस यात्रा पर जाते हैं। तो इस ब्राह्मण जीवन में ऊंची यात्रा पर पहुंचने के लिए खुशी खुशी से हमारी यात्रा होती रहे, उसके लिए बाबा ने हमें ये रूहानी लिफ्ट दी है। तो इस लिफ्ट का हम यदि प्रयोग करते हैं तो कभी भी थकावट का अनुभव नहीं होगा, अथक होकर के हम आगे बढ़ते रहेंगे। अगला साधन है इनकम, कमाई। बाबा कहते हैं जहां कमाई होती है वहां कभी भी थकावट नहीं होती है। तो इस ब्राह्मण जीवन में बाबा ने हमें जो कमाई के साधन दिए हैं, उन कमाई के साधनों को हम यूज करते हैं, उसको उपयोग में लाते हैं, तो उनके माध्यम से जो हमारी कमाई होती है वो कमाई हमें खुशी देती है, और जहां खुशी है वहां अथकपन है। तो बाबा ने कहा कि याद के माध्यम से आपकी कमाई जमा होती है, कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा होती है। तो याद के माध्यम से कमाई, पढ़ाई से कमाई, सेवाओं से कमाई, दुआओं से कमाई। तो बाबा ने हमें जो इस ब्राह्मण जीवन में अनेक प्रकार के कमाई करने के साधन दिए हैं, उन साधनों को अप्लाई करते हम कमाई करते हुए चलेंगे तो हमारी यात्रा सुखद होती रहेगी, हम खुशी खुशी से यात्रा पर आगे बढ़ते रहेंगे। अगला साधन है दुआएं। जहां दुआएं होती हैं वहां कभी थकावट नहीं होती है। तो बाबा कहते हैं इस ब्राह्मण जीवन में आपको दुआएं देने भी है और दूसरी आत्माओं से दुआएं लेने भी है। कोई कैसी भी आत्मा हो, कोई कैसी भी आत्माएं हैं, आपको हर एक आत्मा को दुआएं देनी है, साथ साथ अन्य आत्माओं से दुआएं लेनी भी है। और दुआएं लेने का साधन है उनको दुआएं देना, उनको खुशी देना, उनको सहयोग देना, उनको मदद करना, जो उनकी डिमांड है वो पूरी करना, लेकिन मर्यादा अनुसार। तो जितना हम दुआओं का खजाना, दुआओं का स्टॉक अपने पास जमा करते रहेंगे, उतनी हमारी यात्रा सुखद होती रहेगी। अगला साधन है प्राप्तियां। इस ब्राह्मण जीवन में जो भगवान ने हमें प्राप्तियां कराई हैं, हमें उन प्राप्तियों को बार बार याद करना है। वो प्राप्तियां हमारे पास हैं, वो खजाने हैं, लेकिन उन खजानों को हम याद नहीं करते। तो उन खजानों को याद ना करने के कारण हमारे मन में खुशी इमर्ज नहीं होती है। हमारे पास क्या क्या है, किसी के पास लॉकर में बहुत सारा धन जमा हो लेकिन उसको वो उपयोग में न लाए तो कोई उसका यूज भी नहीं है, उसका उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से इस ब्राह्मण जीवन में जो हमें प्राप्तियां हुई हैं, जो खजाने मिले हैं, उन खजानों को हम बार बार इमर्ज करें, याद करें, रियलाइज करें, अनुभव में लाएं, उसको यूज करें। तो जितना हम इन खजानों को यूज करेंगे उतनी हमारी खुशी, हमारी शक्ति बढ़ती रहेगी और उसके साथ साथ हम इस यात्रा में निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। तो इस ब्राह्मण जीवन के ऊंची मंजिल को हासिल करने के लिए बाबा कहते हैं कि बाप आप बच्चों को अपने पलकों पर बिठाकर इस यात्रा पर ले जा रहा है। तो बाबा ने हमें जो अथक बनने के साधन दिए हैं, उन साधनों को हम अप्लाई करेंगे तो हम इस यात्रा पर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। तो हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। इस ब्राह्मण जीवन में ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो हमें थकावट का अनुभव कराते हैं? तो सबसे पहला कारण है कमजोरियां, वीकनेसेस। दूसरा कारण है बॉन्डेज, बंधन। तीसरा वर्डन, बोझ। उसमें भी कई कारण हैं। चौथा है लीकेज, कोई ना कोई लीकेज जीवन में है जो हमें थकावट का अनुभव करा रहे हैं। पांचवा कारण है कन्फ्लिक्ट, संघर्ष, संबंधों में संघर्ष, पुरुषार्थ में संघर्ष, सेवाओं में संघर्ष, जिसके कारण मन में थकावट पैदा होती है। अगला कारण है बीमारियां, डिजीज। अगला कारण है साइड सीन्स, उसमें हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं जिसके कारण हमें बार बार बाहर निकलना पड़ता है और उसके कारण हम थकावट का अनुभव करते हैं। और लैक ऑफ अटेनमेंट्स या एक्सपीरियंस, प्राप्तियों की या अनुभूतियों की कमी। अगला कारण है मेहनत, मन की मेहनत। तो बाबा ने जो हमें साधन दिए हैं उसमें पहला साधन है कि बाप का हाथ और साथ। दूसरा साधन है डबल लाइट स्थिति, सब बोझ बाप को देकर के डबल लाइट होकर चलेंगे तो कभी भी थकावट का अनुभव नहीं करेंगे। तीसरा है छत्र छाया। अगला साधन है बाप की गोद। अगला साधन लिफ्ट। अगला दुआएं, प्राप्तियां। अगला बाप का दिल तख्त। और आगे इनकम, कमाई करते रहेंगे तो कभी भी थकावट का अनुभव नहीं करेंगे। और दुआएं देने भी हैं, दुआएं लेने भी हैं, तो इससे हम अथक बनकर चलते रहेंगे। और लास्ट है प्राप्तियों का अनुभव करते हुए चलना। तो बाबा ने जो हमें इस ब्राह्मण जीवन में साधन दिए हैं उन साधनों को अप्लाई करते हुए हम चलेंगे तो इस यात्रा पर हम खुशी खुशी से आगे बढ़ते रहेंगे। हमारी जो यात्रा है वो सुगम, सरल और सुखद होगी। ओम शांति।
जागेंगे सोई तकदीरें।